सफ़ा नंबर 198। अहले जमा इकबाल के जदीद असालेब बयाने में कीड़े निकालते थे, वो तो हाली की ज़बान को भी मुस्तरद ना समझते थे, क्योंकि हाली का वतन पानीपत था, जहाँ की ज़बान टकसाली ना थी। सो शुरू ही से टकसाली ज़बान के मद्दियान ने इकबाल की ज़बान और मुहावरे पर अतराज वारद किए। अद पंज ने अपने मखसूस अंदाज में इनका अंदाज से ब्याह का मज़ाक़ा उड़ाया। फिर 1903 में किसी अखबार में तनकीद हमदर्द के नाम से इनकी ज़बान और फ़न पर इतराजात उठाए गए। इकबाल ने जवाब में उर्दू पंजाब ज़बान में के ज़ेर अनवान से एक मजमून तहरीर किया, जो मखज़न में शाया हुआ। इस जवाबी मजमून के कुछ हिस्से ज़िक्र इकबाल में दिए गए हैं। सालक का तजज़िया है कि गो अभी इनकी उम्र 25 और 30 के दरमियान थी, वो उलूमे मगरबी का बहर बेपाया होने के बावजूद फारसी और उर्दू शायरी और इन दोनों ज़बानों के गवामज के माहिर थे। लाहौर में इकबाल का हल्का अहबाब खासा वफसी हो गया था। मोहम्मद दीन तासीर के बयान के मुताबिक इब्तदाई दौर के दोस्तों गुलाम भीक नारंग मीर एजाज हुसैन सर अब्दुल कादर वगैरह के अलावा जस्टिस शाह दीन और मियाँ शाह नवाज भी इनके दोस्त बन गए थे। मियाँ फजल हुसैन और सर मोहम्मद शफ़ी से भी गहरे तलुकात कायम हुए। चौधरी सर शबाबुद्दीन और फिर मियाँ अहमद यार दुल्ताना से भी दोस्ती हुई। स्वामी राज तीरथ से बहुत मेल जोल था और शिव नारायण शमीम से बेतकल्फी थी। भाटी दरवाजे के मुअज्जज़ मकीनों से इनके दोस्ताना मराशम कायम थे। फ़कीर सैयद इफ्तखारुद्दीन और फ़कीर सैयद नजमुद्दीन के अलावा ख्वाजा अब्दुल समद कुक्कड़ व रईस बारामूला, जो खुद फारसी के तबाह शायर थे और मकबल तखल्लस करते थे के जरिए सफ़ा नंबर 199। मियाँ निज़ामुद्दीन बारूद खाना वाले से दोस्ताना तल्लुकात कायम हुए। अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए दूर दराज से बहुत अहम शख्सियतें लाहौर आती थीं, लिहाजा इजलासों में इकबाल की मुलाकात लाहौर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की मुस्लिम बरगजीदा हस्तियों से होती रहती थी। ख्वाजा हसन निज़ामी और मौलाना गुलाम कादर ग्रामी से इकबाल के दोस्ताना मरासम अंजुमन के इजलासों ही की वजह में कायम हुए। बाद में ग्रामी तो जब भी लाहौर आते इकबाल के हाँ ही ठहरते थे। इस ज़माने में इकबाल सिर्फ उर्दू शेर कहते थे और फारसी में गलबन चंद अशार के सवा कोई चीज़ मंजर आम पर ना आई थी, लेकिन ग्रामी महज फारसी के शायर थे। इनके साथ दोस्ताना मरासम इकबाल की यूरोप से वापसी के बाद मजीद मुस्तहकम हो गए। दोस्ती में इकबाल इस कदर वाजेदार और मुस्तकिल मिजाज थे कि जिस शख्सियत या ख़ानदान से एक बार कल्बी तलक कायम किया, इसे ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इस्तवार रखा। इस दौर में इकबाल सितार नवाजी के बेहद शायक थे, लेकिन फ़कीर सैयद नजमुद्दीन को ताउस नवाजी का शौक़ था। वो बड़े कैफ के आलम में ताउस बजा कर इकबाल और दूसरे अहबाब का दिल बहलाते थे। अंजमन कश्मीरी मुसलमान से वाबस्तगी के सबब इकबाल का तारफ लाहौर की कश्मीरी बरादरी के मौजदीन से हुआ। इकबाल 1896 ही से इस अंजमन की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने लगे थे और इसके इजलासों में अशार पढ़ते थे। ये अंजमन 1896 में 3 मकासद के लिए कायम की गई थी: इसलाह रसूम शादी व गमी, कश्मीरी मुसलमानों में तलीम तजारत संत हराफत और ज़रात को रवाज देना, और कौम में इतिहाद व इतफाक़ बढ़ाना। मगर कुछ मुद्दत बाद ये अंजमन बंद हो गई, फिर 1901 में दोबारा जिंदा की गई। इसकी कार्रवाइयाँ महानामा कश्मीरी गज़ट में छपती थीं, जिसे फौक की ज़ेर अदारत जान मोहम्मद गनाई ने जारी कर रखा था। इकबाल इस अंजमन के सेक्रेटरी बने और इंग्लिस्तान से वापसी पर जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए। आप कश्मीरियों की फलाह बहबूद के लिए अंजमन की कार्रवाइयों में सरगर्म हिस्सा लेते रहे। बिलाकर इसी अंजमन की बुनियाद पर आल इंडिया मुस्लिम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस लाहौर आलम वजूद में आई, जिसने कश्मीर में बेदारी पैदा करने और तलीमी पसमानदगी दूर करने में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। इस कॉन्फ्रेंस के पहले जनरल सेक्रेटरी इकबाल थे। मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी के बयान के मुताबिक आज भी मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में जो मुसलमान मुमताज़ उहदों पर फायज हैं, इनमें से बेशतर इसी कॉन्फ्रेंस के तलीमी वज़ाइफ के रहने मिन्नत है। बहरहाल 1918 में जब इकबाल ने महसूस किया कि मुसलमान आलमी क़ुव्वत के नसबुल ऐन को पीछे धकेल कर बरदरियों के फरेब में मुबतला हो गए हैं और इनकी फरेब खोरगी से मिली सियासत बुरी तरह मुतासर हो रही है, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इस दौर में अंजमन हमायत इस्लाम से वाबस्तगी के सबब इकबाल की मिली या अवामी शायरी की इब्तदा भी हुई। इकबाल 12 नवंबर 1899 को अंजमन की मजलस से मुंतजमा के रुकन मुंतखब किए गए और यूँ इनकी अंजमन के साथ तल्लुकात की जो उन्होंने आखिरी दम तक कायम रखे। इब्तदा हुई अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर का क्याम 1884 में अमल में आया। मकासद ये थे कि ईसाई मिशनरियों की तबलीग का सद्देबाब करना, मुसलमानों की तलीम के लिए स्कूल व कॉलेज कायम करना जिसमें जदीद व कदीम अलूम पढ़ाए जा सके, मुसलमानों के यतीम लावारिस बच्चों के लिए ऐसे अदारे कायम करना जिनमें निगहदाश्त के अलावा इन्हीं तलीम व तरबियत भी दी जा सके, और इस्लामी लिटरेचर की अशात व फरोग का अहतमाम करना। अंजुमन का आगाज चून 54 रुपए के हकीर सरमाए से हुआ जो मस्जिद बक्कन खां के इज्तमा में जमा किए गए। इसके बाद रफ्ता रफ्ता चंदे के जरिए अंजुमन ने लड़कों और लड़कियों के लिए कई स्कूल जारी किए। इस्लामिया कॉलेज शेरांवाला दरवाज़ा में इस्लामिया स्कूल की इमारत भी 1906 तक कायम रहा। बाद में 1907 में इसका संगे बुनियाद रेलवे रोड पर अफगानिस्तान के हुक्मरान अमीर हबीबुल्ला खान ने लाहौर आकर रखा और कॉलेज की इमारत की तकमील हुई। अंजुमन ने यतामी के लिए मर्दाना जनाना दारुल शफकत, दारुल अतफाल और दारुल अमान भी जारी किए और पेशा वराना तरबियत का मरकज़ कुतुब खाना छापा खाना वगैरह के क्याम का अहतमाम भी किया गया। अंजुमन मिली चंदा के जरिए चलती थी इसलिए इसे चंदा जमा करने के लिए वसाइल की तलाश रहती थी। सालाना इजलासों का अहतमाम भी चंदा की फराहमी का एक जरिया था। इन दिनों अंजुमन का सालाना जलसा जो पंजाब और बैरून पंजाब वालों के लिए एक तरह का इल्मी मेला बन गया था, इस्लामिया हाई स्कूल शेरांवाला दरवाजे के वसी सहन में मुनक्कद हुआ करता था। स्कूल की इमारत 2 मंजिला थी और चारों तरफ कमरे थे। ऊपर के कमरों के आगे गैलरियां थी। नीचे और ऊपर की मंजिल के एक हिस्से में तो स्कूल लगता था लेकिन दूसरा हिस्सा इस्लामिया कॉलेज के लिए मखसूस था क्योंकि अभी कॉलेज के लिए अलहदा इमारत तमीर ना हुई थी। जलसे के मौके पर सहन में दरियां बिछा दी जाती, कुर्सियां सिर्फ स्टेज पर होती। सहन और गैलरियों में लोगों का वो हुजूम होता कि तिल धरने को जगह ना मिलती। स्टेज पर मुमताज उलमा ओबा शोहरा और दीगर मिल्ली रहनुमा बैठते। इस जमाने के इजलास जलसों में शरीक होने वाली अहम शख्सियात में से कुछ ये थी: हाली शिबली, अकबर अलाबादी, सिमाब अकबर आबादी, साहिल दहलवी, अरशद गोरगानी, खुशी मोहम्मद नाजर, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ग्रामी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मौलाना अब्दुल्ला टोंकी, सर अब्दुल कादर, सर फजल हुसैन, सर मोहम्मद शफी, नवाब जुल्फकार अली खान, मौलाना सुलेमान फुलवारी, मौलाना असगर अली रोही, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, मौलाना सलाउल्ला, मौलाना नज़ीर अहमद दहलवी वगैरह। इकबाल ने पहली मरतबा अंजुमन के स्टेज पर 24 फरवरी 1900 के सालाना जलसे में अपनी नज़म नाला यतीम पढ़ी। सदारत के फ़राइज़ शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद अंजाम दे रहे थे। इकबाल ने इस सोज गुजार से यतीमों की बेकसी का नक्शा खींचा कि तमाम आंखें अश्क बार हो गई। इसके बाद जब यतीम को दरबार नबवी में ले गए तो लोगों की चीखें निकल गईं। फिर जब रसालत मआब ने यतीम की मार्फत उम्मत को इनकी अमदाद का पैगाम दिया तो लोगों ने जेबें उल्ट दी। जलसे में मियाँ अहमद असलम मौजूद थे। वो बयान करते हैं कि इकबाल गोरे चिट्टे रंग के दुबले पतले और खूबसूरत जवान थे। उन्होंने ऐनक लगा रखी थी, शलवार कमीज स्याह अचकन और रूमी टोपी पहने हुए थे। नज़म का मौजू दर्द मंदाना था, जुबान सादा थी, आवाज़ बुलंद वाल दिलकश और पढ़ने का अंदाज बड़ा पुरसूज था। इनकी आवाज़ की सहरी ने हुक आलम तारी कर दिया था। ख्वाजा मोहम्मद हयात की इस जलसा की रुदाद के मुताबिक जब ये नज़म रखत अंगेज अंदाज में पढ़ी जा रही थी तो पैसा अखबार वाले मुंशी अब्दुल अजीज ने इन्हीं चंद बंद पढ़ने के बाद इस गरज से रोक दिया कि नज़म का मतबूआ का कापियां जिनके साथ कई साथी फरोख्त कर ली जाएं। कीमत फी जिल्द 4 रुपए बतलाई तो ये जिल्द आनन फानन फरोख्त हो गई मगर मांग बदस्तूर रही। चुनचा बाद हजरात ने खरीद कर वो जिल्दें इस शर्त पर अंजुमन को मुकर्रर अतिया में दे दी कि कोई जिल्द 50 रुपए से कम पर फरोख्त ना हो। चंद लम्हों बाद वो भी बिकी। इकबाल के वालिद ने जो इस वक्त गैलरी में बैठे थे 16 रुपए में एक जिल्द खरीदी। नज़म के खात्मे पर साहब सदर ने कहा कि मैंने अपने कानों से 19 व 20 के मरीसिये सुने मगर जिस पाए की नज़म आज सुनने में आई है जो और जो असर इसने मेरे दिल पर किया है वो इससे पहले कभी ना हुआ था। लोगों ने इकबाल को मजबूर करके नज़म दोबारा पढ़वाई। इसके बाद इकबाल की नज़में अंजुमन के सालाना जलसों की एक इम्तियाजी खसूसियत बन गई। चुनचा 1901 में अंजुमन के इजलास में इकबाल ने अपनी नज़म एक यतीम का खताब अहले ईद से पढ़ी। 1902 के इजलास में खैर मकदम दीन व दुनिया और इस्लामिया कॉलेज का खताब पंजाब के मुसलमानों से पढ़ी। 1903 के इजलास में फरिया दामत उम्मत पड़ी। इस मौके पर सर अब्दुल कादर, सर मोहम्मद शफी, सर फजल हुसैन, नवाब जुल्फकार अली खान, शाह सुलेमान फुलवारी, अब्दुल्ला टोंकी, सनाउल्ला खुशी, मोहम्मद नाजर और अरशद गोरगानी, ऐसी हस्तियां मौजूद थीं। ये नज़म लोगों के इसरार पर गालबन तरन्नम से पढ़ी गई, क्योंकि इस इजलास की रुदाद में दर्ज है कि कुदरत ने इकबाल को गला भी अता किया है और ऐसी बुलंद शीरीं और पुरदर्द आवाज़ की नेमत मरम्मत की है जो इन्हीं का हिस्सा है। नज़म के अहतमाम पर ख्वाजा अब्दुल समद कुकड़ू ने इकबाल को एक नकराई तमगा पहनाया जो वो कश्मीर से बनवा कर लाए थे। 1904 के इजलास में उन्होंने नज़म तस्वीर दर्द पढ़ी। इस मौके पर दीगर शख्सियात के अलावा हाली, अरशद गुरगानी, सर मोहम्मद शफी, सर अब्दुल कादर, सर फजल हुसैन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और ख्वाजा हसन निज़ामी मौजूद थे। नज़म तरन्नम से पढ़ी गई और नहायत तवज्जो से सुनी गई। एक शेर से मुतासर होकर हाली ने बेख्तियार 10 रुपये का नोट पेश किया जो अंजुमन के चंदा में जमा हो गया। नज़म के अख्ताम पर ख्वाजा हसन निज़ामी इस कदर मुतासर हुए कि अपना अमामा उतार कर इकबाल के सर पर रख दिया। मियाँ बशीर अहमद पर जो इस इजलास में मौजूद थे बयान करते हैं, एक हसीन नौजवान नाक पकड़कर ऐनक लगाए, शलवार और चांदी जूते पहने, सर गिरेबान का बटन खुला, स्टेज पर खड़ा खुश अलहानी से एक मखसूस लय में पढ़ रहा था। यहाँ तक कि एक एक शेर बिकने लगा। इकबाल इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफे के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। एक नौजवान ने बढ़कर शायद 15 रुपए में एक शेर खरीद लिया। मालूम हुआ कि ये इकबाल के गवर्नमेंट कॉलेज का एक हिंदू शागिर्द है। ये कीमतें सब अंजुमन हमायत इस्लाम के चंदा में अदा होती थी। इस इजलास के दूसरे रोज की नशिस्त में हाली अपनी नज़म पढ़ने के लिए उठे, लेकिन पैराना साली के सबब इनकी नहीफ आवाज़ हाजरीन तक ना पहुंचती थी। जलसे में लातदाद इंसानों का मजमा था, इसलिए अफरा तफरी पैदा होने लगी। सर अब्दुल कादर ने खड़े होकर मजमा को आराम व सुकून से हाली की जुबान से तुबरकन कुछ सुनने की तलकीन की और कहा कि बाद में इकबाल इनकी नज़म पढ़कर सुना देंगे। थोड़ी देर बाद इकबाल स्टेज पर आए और हाली की नज़म सुनाने से कबल एक फिल्बैया रुबाई नहायत खुश अलहानी से पेश की। मशहूर जमाने में है नाम हाली, ममूर मैं हक से है जाम हाली, मैं कश्वरे शहर का नबी हूँ, गोया नाजल है मेरे लब पे कलामे हाली। इसके बाद उन्होंने अपनी दिलकश और शीरी आवाज़ में हाली की पूरी नज़म मादरे पंजाब अंजमन हाजरीन को सुनाई। इस मरहले पर सवाल पैदा होता है कि इस अहद के इकबाल ने जो वतनी कौमियत की महक से शरशार और वसीउल मशरबी के हमा औस्त में मुस्तगरक थे, अपने मौजूआत में इस्लाम का अंसर क्यों कर शामिल किया? क्या इनकी मुस्लिम कौमियत या मिल्ली मातम की शायरी हाली या शिबली की तलकीद में वजूद में आई? इस सवाल के जवाब के लिए इकबाल के गिर्दोनवा से पूरी तरह बाखबर होने के लिए तरीक एहतियात ममालक इस्लामिया का सरसरी जायजा लेने की अशद ज़रूरत है। सफ़ा नंबर 205। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपी ममालक में संत इनकलाब, कलीसा और रियासत के आपस में दंगल में रियासत की फतह, वतनी कौमियत के फरोग और अकलियत के असूलों पर जदीद अलूम और साइंस की तरक्की ने शहनशाहियत और अस्तमार और सरमायादाराना निज़ाम को जन्म दिया। तजारत और सनत हरफत के फैलाव की ख्वाहिश ने यूरोपी ममालक में मुलक गिरी की हवस पैदा की, क्योंकि सनत हरफत की पैदावार बढ़ाने की खातर खाम माल की ज़रूरत थी और तजारत के फ़रोग के लिए बैरूनी मंडियाँ दरकार थी। सो यूरोपी ममालक की तवज्जो शुमाली व लातीनी अमरीका, अफ्रीका, एशिया और दुनिया के दीगर खित्तों की तरफ मबजूल हुई। यूरोप और रूस, अफ्रीका और एशिया, मशरक बाईद और बहरुल काहिल के दरमियान ममालक इस्लामिया को एक खसूसी जोग्राफियाई अहमियत हासिल थी। शुरू में तो यूरोप और एशिया में समुद्री आमद रफ्त अफ्रीका के गिर्द चक्कर काट कर राइस उम्मीद के लिए लंबे रास्ते से होती थी, लेकिन 18वीं सदी के अख्ताम पर यूरोप की नौ आबादियाती ताकतों ने अपनी मुआशी ज़रूरियात के पेश नज़र बहरा रूम में से आमद रफ्त का नया समुद्री रास्ता नहर सवीज की तमीर की सूरत में ढूंढ निकाला। बहरहाल इस नए रास्ते को जबल तारक और सरजमीन मिस्र कंट्रोल करते थे। इसी तरह मशरक बाईद का समुद्री रास्ता जजीरा नुमा मलाया की इलाकाई हदूद में से गुजरता था। यूरोप और जनूबी रूस के दरमियान बहरा अस्वद का समुद्री रास्ता तुर्की की इलाकाई हदूद में से गुजरता था। नीज खुश्की के रास्ते बाकू में तेल के जखायर तक पहुंचने के लिए भी वस्ती एशिया के मुस्लिम ममालकों में से गुजरना पड़ता था। پس روس اور یورپ کی نو آبادیاتی طاقتوں کی استعماری توسیع کے سبب دنیا اسلام کے مختلف علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے وسطی ایشیا، ہندوستان، ملایا، جزائر شرق الہند، چین اور شمالی افریقہ نے ان کا مقابلہ تو کیا مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمزور مسلم سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں استعمار پرست روس اور یورپی طاقتوں کے اقتدار کے زیر اثر دنیا اسلام کا اخلاقی، سیاسی اور معاشی زوال انتہا تک پہنچ گیا۔ اس عمومی انحطاط کے باعث عرب، شمالی افریقہ، وسط ایشیا اور ہندوستان میں وہابی قسم کی کئی اصلاحی طریقے وجود میں آئی، جن کا مقصد عالم اسلام میں ان تمام خرابیوں کی بیج کنی تھا جو مسلمانوں کے زوال کا سبب تھی۔ دنیا بھر کے مسلمان ان طریقوں سے متاثر ہوئے، کیونکہ محصلین نے اسلام کی اصل پاکیزگی کی طرف اس سر نو رجوع کرنے کی تلقید کی اور بتوں کے مکمل رد پر زور دیا تھا۔ ابتدا میں با اعتبار نوعیت گو یہ طریقے داخلی تھی، لیکن کچھ مدت بعد روس اور یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کے استحصال کے خلاف انہوں نے زبردست مزاحمت کی۔ سید احمد بریلوی اور ان کے مقتدرین نے ہندوستان میں، اور محمد السنوسی نے شمالی افریقہ میں برطانوی استعمار کے خلاف جہاد کیا۔ مغرب سے براہ راست تعلق کے باعث نئے نظریات، مثلاً دستور پسندی، سیکولرزم، نیشنلزم وغیرہ دنیائے اسلام میں رد در آئے۔ گو اسلام کا جدید احیا وہابیت کے ہاتھوں وجود میں آیا، لیکن ایک دو نسلوں کے بعد مسلمانوں میں وسیع النظری یا لبرلزم کی تحریک عالم وجود میں آئی، اور عالم اسلام میں کچھ ایسے مسلحین بھی پیدا ہو گئے جنہیں مغربی نظریات کو اسلامی رنگ دینا شروع کر دیا۔ ترکی میں مدحت پاشا، وسطی ایشیا میں مفتی عالم جان، مصر میں شیخ محمد عبدہ اور ہندوستان میں سر سید احمد خان نے اس سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ یہاں تک کہ گمان ہونے لگا کہ مسحلین کے دو گروہ، یعنی قدامت پسند اور اعتدال پسند، ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ صف راہ ہی رہیں گے، لیکن چونکہ دونوں گروہ مغرب کے استعمار کے بیرونی خطرے سے آگاہ تھے، اس لیے اسلام کے دینی اور ملکی دفاع میں دونوں نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ جدید اسلام میں قدامت پسندی اور اعتدال پسندی کے ان دو بظاہر مخالفانہ رجحانات کے درمیان مصالحت کرانے کے بارے میں عموماً جمال الدین افغانی 1838 تا 1897 کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے یورپ کی ترقی کی تکنیک کو سمجھنے پر زور دیا اور مسلمانوں کو مغربی طاقتوں کے استعمار کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی قوت کے اصل راز، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور تنظیم کو اپنانے کی تلقین کی۔ اس زمانے میں دنیا اسلام کس پری کی حالت میں تھی، سلطنت عثمانیہ محض نام کی اسلامی سلطنت رہ گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے 1876 میں سلطنت عثمانیہ کی باگڈور سنبھالی تھی۔ 1876 سے لے کر 1882 تک مسلمان مشرقی یورپ کے بیشتر علاقوں سے نکال دیے گئے تھے، تینوس فرانس کے قبضے میں چلا گیا تھا اور جبل طارق و مصر پر انگریز حاوی ہو گئے تھے۔ وسطی ایشیا کی مسلم ریاستیں یک بعد دیگر راز کی سلطنت روس کا حصہ بن گئی تھی۔ شمالی اور جنوب مغربی چین کے مضطرب مسلمان 1856 سے لے کر 1878 تک جنگ آزادی میں ناکام ہونے کے بعد ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے ختم کر دیے گئے۔ فرانسیسیوں کی نگاہیں مراکش پر تھی، ایران نزاع کے عالم میں تھا، جزائر شرق الہند پر ڈچ غلبے کے سبب مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی۔ برصغیر ہند میں بھی 1857 کے ہنگامے کے بعد اسلام کے جھنڈے سرنگو ہو چکے تھے، ملایا پر انگریز قابض تھے اور افغانستان کے خارجی امور کا کنٹرول بھی 1879 سے انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ اس بے بسی کے عالم میں مسلمانوں کی نگاہیں اسلامی سلطنت عثمانیہ کی طرف اٹھتی تھیں، کیونکہ صرف یہی ایک اسلامی سلطنت رہ گئی تھی جس کا بین الاقوامی سیاسیات میں کچھ نہ کچھ وقار ابھی قائم تھا۔ لیکن یورپی طاقتوں میں ملک گیری کی ہوس بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کی نگاہوں میں سلطنت عثمانیہ میں اسلام کا ٹمٹماتا ہوا آخری چراغ بھی کھٹک رہا تھا۔ انہوں نے اسے یورپ کے بیمار آدمی کا نام دے رکھا تھا۔ 1897 میں انگریزوں کے اشارے پر یونانیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان ہند میں انگریزی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ دوبارہ ابھر آیا۔ بہرحال ترکوں کے ہاتھوں یونانی باغیوں کی شکست پر مسلمان ہند بہت خوش ہوئے۔ اس پر سر سید کا ماتھا ٹھنکا۔ سر سید گو غروب ہوتا ہوا آفتاب تھے، مگر ان کی نگاہوں کے سامنے 1857 کا ہنگامہ ابھی تک ایک زندہ حقیقت تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ مبادہ مسلمان اس نئے جذبہ نفرت سے متاثر होकर एक बार फिर अपने हाकमों से नबर्द आजमा हो जाएंगे और इनकी फलाह बहबूद के लिए जो अमारत सर सैयद ने बुलंद कर रखी थी वो जमीन पर आ रहे। इनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमान ना सिर्फ सियासियाती हिंद से अलग थलग रहें बल्कि इन्हीं दुनिया इस्लाम की सियासी कशमकश में भी दिलचस्पी लेने से बाज रखा जाए। इसी ख्याल के पेश नज़र सर सैयद ने खिलाफत उस्मानिया की तरदीद में चंद मजमून तहरीर किए। सुल्तान अब्दुल हमीद के अहद में दाखिली एतबार से सल्तनत उस्मानिया मतलब के अनानियत और दस्तूरियत की कशमकश में मुबतला थी। सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी पोजीशन मजबूत करने की खातर बहसीयत खलीफा इस्लाम व दीगर मुस्लिम ममालक की हमायत हासिल करने के दरपे थे ताकि तुर्कों में दस्तूरी तहरीक का खात्मा किया जा सके। गो वो अपनी तख्त नशीनी के फौरन बाद मद्दत बादशाह का तैयार करदा जमहूरी दस्तूर नाफज करने पर राजी हो गए जिसके सबब इनके बाद अख्तियार छिन गए, लेकिन जो ही बहसीयत खलीफा उन्होंने अपने आप को मजबूत समझा, उन्होंने अपने अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मजलिस आइन साज तोड़ दी और शेख उल इस्लाम से ये फितवा हासिल कर लिया कि जो भी दस्तूर का मुतालबा करेगा इसके खिलाफ जहाद करना मुसलमानों का फर्ज है। तुर्की की जदीद में इस दौर को दस्तूर दौरे अस्तबदाद का नाम दिया गया है। बहरहाल 1908 में अनवर पाशा और तलत पाशा की क्यादत में नौजवान तुर्कों के इनकलाब के सबब दोबारा दस्तूर के नफूज पर मजबूर हो गया, मगर 1909 में तकाबली इनकलाब की नाकामी पर इन्हें मजूल कर दिया गया। जमालुद्दीन अफगानी उस्मानी सुल्तान खलीफा की सरबराही में जमहूरियत की बुनियादों पर एक दस्तूरी वफाक की सूरत में ममालक के इस्लामिया के इतिहाद के दाई थे। इस लिहाज से इन्हीं तरीक इतिहाद इस्लाम या पैन इस्लामिज्म का बानी समझा जाता है। वो 1838 में असद आबाद अफगानिस्तान में पैदा हुए। कुछ अरसे तक उन्होंने अमीर दोस्त मोहम्मद खान और दीगर अफगान अमीरों की इंतजामिया में खिदमात अंजाम दी। उन्होंने हरमैन शरफैन में की जियारत भी की और 1869 में अफगानिस्तान को खैरबाद कहकर हिंदुस्तान के रास्ते कहरा पहुंचे, जहां कुछ मुद्दत क्याम करके मुस्लिम ममालक के इतिहाद की जरूरत पर तकरीरें की। इसके बाद वो इस्तंबुल गए, लेकिन 1871 में फिर कहरा वापस आ गए और मिस्र की कौमी तहरीक आज़ादी में सरगर्म अमल हुए। 1879 में अंग्रेज़ों ने इन्हें मिस्र से निकाल दिया और वो हिंदुस्तान आकर हैदराबाद दक्कन में मुकीम हुए। 1882 में मिस्री कौम परस्तों ने अरबी पाशा की ज़ेर क़यादत खदियों मिस्र की मतलक अनानियत और अंग्रेज़ों की मिस्र के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद किया, सफ़ा नंबर 210, जिसके नतीजा में अंग्रेज़ मिस्र पर काबज़ हो गया। 1882 में मिस्र पर अंग्रेज़ों के तसल्लत के बाद जमालुद्दीन अफगानी को हिंदुस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। वो लंदन पहुंचे और फिर पेरिस में 3 साल के क्याम के दौरान अपना हफ्त रोज़ा अल उरवातुल वस्सा निकालते रहे। 1885 में एक बार फिर लंदन गए और बाद में मास्को और सेंट पीटरबर्ग गए और 4 साल तक रूस में क्याम किया। इस अरसे में उन्होंने वस्ती एशिया के मुसलमानों को ज़ारे रूस से कुछ दस्तूरी मरात लेकर दी। म्यूनक में जमालुद्दीन अफगानी की मुलाकात ईरान के बादशाह नासरुद्दीन का चार से हुई और वह ईरान बुलवा लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दस्तूरी तहरीक की हमायत की, इसलिए 1890 में इन्हें ईरान बदर कर दिया गया। 1891 में वह एक बार फिर लंदन गए, लेकिन इसी साल वापस इस्तंबुल आ गए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी अगरा के हसूल के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन कामयाबी ना हुई क्योंकि जमालुद्दीन अफगानी तुर्की में भी दस्तूरी तहरीक के हामी थे। 1897 में इनकी वफात इस्तंबुल में हुई। बाद मुहक्किकीन की राय में इन्हें सुल्तान अब्दुल हमीद की हदायत पर जहर दिया गया था। ई जी ब्राउन के नज़दीक इस अजीम हस्ती ने 20 साल की मुद्दत में आलम इस्लाम के हालात को अपनी किसी भी हम असर शख्सियत से ज़्यादा मुतासर किया। वो मिस्र की कौमी आज़ादी की तहरीक के असल मुहर्रक थे। ईरान में दस्तूरी तहरीक इन्हीं की इमा पर मुनज़्ज़म हुई। नीज़ तुर्की के दस्तूर पसंदों को भी इनकी हमायत हासिल थी। इन सब बातों के साथ वो मुस्लिम रियासतों के इतिहाद के दाई थे ताकि मुसलमान आलम को रूस और यूरोप के इस्तमारों इस्तासाल से बचाया जा सके। इन्होंने मुसलमानों में सुन्नी और शिया तफरका मिटाने के लिए शाह ईरान को रजामंद किया कि उस्मानी सुल्तान के खिलाफत के दावे को तस्लीम कर लिया जाए और उस्मानी सुल्तान को मशवरा दिया कि वो शाह ईरान को बतौर सरबराह मुसलमान शिया कबूल कर ले। जमालुद्दीन अफगानी की तहरीक के दो नुमाया पहलू थे। वो एक तरफ तो मुस्लिम ममालक में सलातीन की मतलक अनानियत की बजाय दस्तूरी हुकूमत का नफाज और कानून की बालादस्ती चाहते थे, दूसरी तरफ उस्मानी सुल्तान खलीफा की आइनी सरबराही में आज़ाद मुस्लिम रियासतों के वफाद को आलम वजूद में लाने के लिए कोशां रहे। ये बा अल्फाज दीगर वो सही मानों में एक वफाकी जमहूरी निज़ाम के जरिए आलम इस्लाम में इतिहाद कायम करने के ख्वाहिश मानते, क्योंकि इनके नज़दीक यही वो वाहिद तरीका था जिससे मुसलमान आलम रूसी और यूरोपी इस्तआरों व इस्तेसाल से अपना तहफ़ कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से जवाल पजीर मुस्लिम सल्तनतें जमालुद्दीन अफगानी के अफकार व नज़रियात कबूल करने के लिए अभी तैयार न थी। इधर रूस और यूरोपी ताकतों को जो अपने अपने सियासी और माशी मकासद के हसूल की खातिर दुनिया इस्लाम को पारा पारा देखना चाहती थी, किसी भी सूरत में इस्लाम की वहादत या इतिहाद काबिल कबूल ना था। नतीजा यह हुआ कि यूरोपी प्रेस ने जमालुद्दीन अफगानी और तरीक इतिहाद इस्लाम के खिलाफ सहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि यह तरीक रूस और यूरोप की ईसाई अकवाम के खिलाफ जारहाना इतिहाद है और मुसलमान आलम आपस में मुतहद होकर ईसाइत को दुनिया में बहसीयत एक सियासी कुवत खत्म कर देना चाहते हैं। गर्सिया इस मुदाफाना तहरीक को जुदा हकीकत कोई मुनज़म तहरीक ना थी बल्कि महज एक एहसास था, जारहाना जाहिर करके इसकी जितनी भी मुखालफत हो सकती थी की गई। बहरहाल जमालुद्दीन अफगानी के हिंदुस्तान में क्याम के दौरान सर सैयद और इनके हामी इनसे लग थलग रहे, मगर जब जमालुद्दीन अफगानी कलकत्ता गया तो सैयद अमीर अली मौलवी चिराग अली और हसन अस्करी जैसे मुस्लिम नौजवानों ने इन्हें घेर लिया और इनके अफकार से इस्तफादा किया। सैयद अमीर अली ने जमालुद्दीन अफगानी से मुतासर होकर खिलाफत उस्मानिया की सरबराही में इतिहाद इस्लाम की हमायत में बहुत कुछ लिखा। अलबत्ता इनकी इन तहरीरों से कबल रूस और ईरान के शिया मुजद्दीन ने इस सियासी ज़रूरत पर कई फतवे दे रखे थे। जमालुद्दीन अफगानी ने हिंदुस्तान में क्याम के दौरान सर सैयद के मजहबी नज़रियात की तरदीद में अपना रसाला रद्द नचरिया तहरीर किया और बाद में पेरिस से अपने हफ्त रोज़ा में इनके खिलाफ लिखते रहे। मौलाना शिबली नुमानी 1857 ता 1914 ने तहरीक इतिहाद इस्लाम में गहरी दिलचस्पी ली। वो 16 साल तक अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद के साथ काम करते रहे और सर सैयद के जेरे असर सुल्तान अब्दुल हमीद के दावा खिलाफत इस्लामिया की तरतीद में एक मजमून भी तहरीर किया, लेकिन बकौल इनके ये मजमून उन्होंने अपनी मर्जी से के खिलाफ लिखा था। दरअसल वह सर सैयद के मजहबी और सियासी नज़रियात के मुखालिफ थे। उन्होंने बल आखिर 1905 में अलीगढ़ कॉलेज छोड़कर लखनऊ में निदवातुल उलमा से तलक इस्तवार कर लिया। 1877 में जब तुर्क रूसियों के खिलाफ लड़ रहे थे और इन्हीं अंग्रेज़ों की हमायत हासिल थी तो शिबली ने मजूर तुर्क अस्करियों के लिए चंदा जमा करने की मुहिम शुरू की। ये चंदा बाद में तुर्की भिजवा दिया गया। 1892 में शिबली इस्तंबोल गया और 3 माह तक वहां ठहरे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इन्हीं मजीदी तमगा से नवाजा, लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों के तुर्कों के साथ तल्लुकात ख़राब हो गए तो हुकूमत हिंद ने शिबली को हिंदुस्तान में सुल्तान अब्दुल हमीद का एजेंट समझकर इन्हीं तमगा पहनने से रोक दिया। वो तमगा भी आखिरकार चोरी हो गया। शिबली ने अपने सफर तुर्की की रुदाद कलम बंद की, तुर्कों के मुतलक बहुत कुछ लिखा, नीज अपनी नज़मों में भी इनकी मुसीबतों का जिक्र बार बार किया। सर सैयद सफा नंबर 213। सर सैयद का बताया हुआ रास्ता गरचा मुसहलत वक़्त के तहत दुरुस्त था, लेकिन इसे मुसलमानों के लिए मुस्तकिल लाहे अमल करार न दिया जा सकता था। चुनाचा सर सैयद की वफात के बाद जिस तरह नौजवान मुस्लिम तलीम याफ्ता अफराद में वतनी कौमियत का जज्बा फरोग पाने लगा, इसी तरह कल्बी और जहनी तौर पर वह तरीक इतिहाद से भी मुतासर हुए। लेकिन बज़ाहिर ऐसे इतिहाद के वजूद में आने के मकानात दिखाई ना देते थे बल्कि आए दिन किसी न किसी मुस्लिम ममालक पर मगरबी इस्तेमार के हाथों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता था, जिसे मुसलमान हिंद महसूस तो करते मगर इनकी हालत महज तमाशाई की सी होती। वो मातम के सिवा कुछ ना कर सकते थे, इनकी कोई माकूल सियासी तंजीम थी ना क़यादत। इसलिए तलीम याफ्ता तबका बैक वक्त वतनी कौमियत और आलमी इस्लामी अकूत के मुतजाद जज्बात का हमल था। इकबाल की इस दौर की शहरी मुस्लिम माशरे में इसी तजाद की अक्कासी करती है और बस। इकबाल के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनरी के इम्तिहान मुकाबला में शरीक होने से तो यही जाहिर होता है कि शुरू शुरू में इनका इस आला तलीम के हसूल की खातर यूरोप जाने का इरादा ना था, मगर इन्हें सरकारी मुलाजमत ना मिल सकी। इसी तरह कानून के इम्तिहान में भी नाकामी हुई और इनके लिए सिर्फ तदरीस का मशगला रह गया, जो बजाय खुद कोई मकबूल आमदनी का जरिया ना था। 1904 में जब शेख अब्दुल कादर यूरोप जाने लगे तो इकबाल को भी तहरीक हुई। उन्होंने शेख अब्दुल कादर से कहा कि मैं भी भाई को लिखता हूं, अगर वो बंदोबस्त कर सके तो आपके जाने के 1 साल के अंदर अंदर वहां पहुंच जाऊंगा। इकबाल ने गुज़िश्ता चंद सालों में कुछ रुपए अपनी तनख्वाह से बचा रखे थे। शेख अता मोहम्मद ने भी इनकी امداد کی، اسلامی فلسفہ تصوف کے کسی موضوع پر ڈاکٹریٹ کرنے کی ترغیب تو ممکن ہے انہی آرلر نے دی ہو، لیکن بیجسٹری کرنے کا ارادہ غالباً ان کا اپنا تھا۔ شیخ عبد القادر نے مرزا جلال الدین کو لندن سے واپسی پر تاکید کی کہ اگر اقبال ان کے پاس انگلستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ان کی رہنمائی کی جائے۔ سو انگلستان جانے سے کچھ عرصہ قبل اقبال مرزا جلال الدین کے پاس گئے، یہ دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ دوستانہ مراسم اقبال کی انگلستان سے واپسی کے بعد قائم ہوئے۔ اقبال انگلستان جانے سے قبل ہمیشہ قومی لباس زیب تن کرتے تھے، گھر میں وہ عموماً تہمبند اور بنیان پہنتے، اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو قمیض پہن کر اوپر دھسہ اوڑھ لیتے، باہر جاتے وقت عموماً شلوار قمیض اور اچکن یا کوٹ پہنتے تھے، پاؤں میں پمپ یا پمپ پادیسی جوتا ہوتا اور سر پر رومی ٹوپی یا سیاہ کرا کلی کی اونچی ٹوپی، بعض اوقات سر پر لنگی بھی باندھ لیتے تھے، لیکن یورپ میں پہننے کے لیے انہوں نے خاص طور پر انگریزی لباس یعنی سوٹ سلوائے، اور جب لندن پہنچے تو سوٹ ہی زیب تن کر رکھا تھا۔ علی بشک نے ایک بار راکم کو بتایا کہ اقبال نے فلیٹ ہیٹ صرف یورپ میں طالب علمی کے زمانہ میں پہنا، بعد میں اسے کبھی استعمال نہ کیا۔ لندن روانہ ہونے سے پہلے گرمیوں کی تعطیلات کا بیشتر حصہ اقبال نے سیالکوٹ میں اپنے والدین، اہل و عیال اور بھائی بہنوں کے درمیان گزارا۔ سید میر حسن سے تحقیق کے معاملے میں مشورے بھی کیے، آخر کار وہ اپنے والد ماں باپ اور بھائی سے رخصت ہو کر لاہور پہنچے۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ان کے احباب نے انہیں الوداع کہی۔ اقبال کے لاہور سے لندن تک سفر کی تفصیل ان کی اپنی تحریروں اور احباب کے مضامین میں ملتی ہے۔ وہ 1 ستمبر 1905 کی رات کو لاہور سے دلی روانہ ہوئے، احباب میں سے نارنگ اور شیخ محمد اکرام انہیں رخصت کرنے کے لیے دلی تک ساتھ گئے۔ گاڑی 2 ستمبر 1905 کی صبح دلی پہنچی، اسٹیشن پر خواجہ حسن نظامی اور منشی نظر محمد اقبال کو آئے ہوئے تھے۔ ریل سے اتر کر پہلے منشی نظر محمد کے مکان پر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر سب دوست مل کر نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں ہمایوں کے مقبرہ پر فاتحہ پڑھی اور دارالشکوہ کے مزار کی زیارت کی۔ درگاہ میں پہنچ کر مزار نظام الدین اولیاء پر حاضر ہوئے، اقبال نے عالم تنہائی میں تربت کے سرحانے بیٹھ کر اپنی نظم التجائے مسافر پڑھی۔ ان کی درخواست پر سب احباب باہر سین میں ٹھہرے رہے، بعد میں دوستوں کے اصرار پر وہی نظم سین میں بیٹھ کر مزار کی طرف منہ کر کے دوبارہ پڑھی۔ درگاہ سے واپس ہو کر خواجہ حسن نظامی کے مکان پر قیام کیا اور دوپہر کو لنگر کی مہمانی سے بہرہ اندوز ہوئے۔ ایک نو عمر نو آموز مگر خوش گلو اور روبا مذاق قوال ولایت نامی انہیں کچھ گا کر سناتا رہا۔ شہر واپس ہونے سے پہلے قبرستان کے ایک ویران گوشے میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی تربت پر حاضر ہوئے، نرنگ تربت کے سرحانے لوہے تربت پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ان کے دائیں اقبال عالم محویت میں بیٹھے اور باقی لوگ تربت کے ارد گرد حلقہ باندھے کھڑے تھے۔ دوپہر 2 بجے کا وقت، تیز دھوپ اور ہوا میں گھس مس، لیکن کسی کو گرمی کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ قوال زادے کو عجیب بروقت سوجی کہ ان سے اجازت لے کر غزل گانے لگا، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی۔ زائل کے دو شعروں پر کفیت عجیب رہی، اڑتی پھرے ہے خاک میری کوہ یار میں، بارے اب اے ہوا ہوس سے بال پر گئی، وہ بادہ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کے لذت خواب سہر گئی۔ غزل کے اختتام پر جب کچھ لمحوں بعد ذرا ہوش بحال ہوئے اور سب چلنے کا سوچنے لگے، اقبال جوش محویت میں غالب کی تربت کو بوسہ دیا اور شہر کو روانہ ہوئے۔ اقبال نے رات منشی نظر محمد کے ہاں گزاری۔ اقبال خود تحریر کرتے ہیں، 3 ستمبر کی صبح کو میر نرنگ اور شیخ محمد اکرام اور باقی دوستوں سے دلی میں رخصت ہو کر ممبئی کو روانہ ہوا اور 4 کو خدا خدا کر کے اپنے سفر کی پہلی منزل پر پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن پر تمام ہوٹلوں کے ٹکٹ ملتے ہیں، مگر میں نے ٹامس کک کی ہدایت سے انگلش ہوٹل میں قیام کیا اور تجربے سے معلوم کیا کہ یہ ہوٹل ہندوستانی طلبہ کے لیے جو ولایت جا رہے ہوں نہایت موزوں ہے۔ یہاں کا منتظم ایک پارسی پیر مرد ہے جس کی شکل سے اس قدر تقدس ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو ایران کے پرانے خشور نبی یاد آ جاتے ہیں۔ دکانداری نے اس کو ایسا عاجز سکھا دیا ہے کہ ہمارے بعض علماء میں बावजूद इबादत और मुर्शिद कामल की सोबत में बैठने के भी वैसा इनकसार पैदा नहीं होता। इस होटल में एक यूनानी भी आकर मुकीम हुआ जो टूटी फूटी सी अंग्रेजी बोलता था। कहने लगा, चीन में सौदागरी करता था लेकिन चीनी लोग हमारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। मैंने सुनकर दिल में कहा कि हम हिंदियों से तो ये अफीमी ही अक्लमंद निकले कि अपने मुल्क की सनत का ख्याल रखते हैं। शाबाश अफीमियों, शाबाश, नींद से बेदार हो जाओ। अभी तुम आंखें ही मल रहे हो कि इससे दीगर कौमों को अपनी अपनी फिक्र पड़ गई। हाँ, हम हिंदुस्तानियों से ये तवक्को ना रखो कि एशिया की तजारती अजमत को इस सर नौ कायम करने में तुम्हारी मदद कर सकेंगे। हम मुत्तफिक होकर काम करना नहीं जानते। हमारे मुल्क में मोहब्बत और मुरब्बत की बू बाकी नहीं रही। हम इसको पक्का मुसलमान समझते हैं जो हिंदुओं के खून का प्यासा हो, और इसको पक्का हिंदू ख्याल करते हैं जो मुसलमानों की जान का दुश्मन हो। हम किताब के कीड़े हैं और मगरबी दिमागों के ख्यालात हमारी खुराक हैं। काश खलीज बंगाला की मौजें हमें गर्क कर डालें। एक शब मैं खाने के मेज़ में था कि दो जेंटलमैन मेरे सामने आ बैठे। फ्रांसीसी जुबान में बातें करते थे। आखिर जब खाना खाकर उठे तो एक ने कुर्सी के नीचे से अपनी तुर्की टोपी निकाल कर पहनी, जिससे मुझे ये मालूम हुआ कि ये कोई तुर्क है। मेरी तबीयत बहुत खुश हुई और मुझे ये फिक्र पैदा हुई कि किसी तरह इनसे मुलाकात हो। दूसरे रोज़ मैंने खाम ख्वाह बातें शुरू की। ये नौजवान तुर्क यंग पार्टी से तल्लक रखता है और सुल्तान अब्दुल हमीद का सख्त मुखालफ है। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि शायर भी है। मैंने दरख्वास्त की कि अपने शेर सुनाओ। कहने लगा, मैं कमाल बे तुर्की का सबसे मशहूर जिंदा शायर का शागिर्द हूँ। कमाल बे के जो अशार इसने सुनाए वो सब के सब नहायत उम्दा थे, लेकिन जो शेर अपने सुनाए वो सब के सब सुल्तान की हज्जू में थे। एक रोज़ सर शाम मैं और ये तुर्क जेंटलमैन बम्बई का इस्लामिया मदरसा देखने चले गए। वहाँ स्कूल की ग्राउंड में मुसलमान तलबा क्रिकेट खेल रहे थे। हमने इनमें से एक को बुलाया और स्कूल के मुतलक बहुत सी बातें इससे दरियाफ्त की। गर्ज के बम्बई खुदा इसे आबाद रखे, अजीब शहर है। बाजार कुशादा, हर तरफ पुख्ता सर बकलफ इमारतें हैं कि देखने वालों की निगाहें इनसे खैरा होती हैं। बाजार में गाड़ियों की आमदरफ्त इस कदर है कि पैदल चलना मुहाल हो जाता है। यहाँ पारसियों की आबादी 80-90 हज़ार के करीब है, मगर ऐसा मालूम होता है कि तमाम शहर ही पारसियों का है। इस कौम की सहलियत नहायत काबिल तारीफ है और इनकी दौलत और अजमत बेअंदाज़ा। सफा नंबर 218। मगर इस जिंदा कौम के लिए किसी अच्छे फ्यूचर की पेशन गोई नहीं कर सकता। ये लोग आमतौर पर सब के सब दौलत कमाने की फिक्र में हैं और किसी चीज़ पर इक्तसादी पहलू के सिवा किसी और पहलू से निगाह ही नहीं डाल सकते। अलावा इसके कि ना इनकी कोई जुबान है, ना इनका लिटरेचर और ना तुर्रा, ये कि फारसी को नफरत और हकारत की निगाह से देखते हैं। अफसोस, ये लोग फारसी लिटरेचर से गाफल हैं, वरना इनको मालूम होता कि ईरानी लिटरेचर में अरबियत को फिल हकीकत कोई दखल नहीं बल्कि जुर्दश्ती रंग इसके रगो रेशे में है और इसी पर इसके हुस्न का दारोमदार है। मैंने स्कूल के पारसी लड़कों और लड़कियों को बाजार में फिरते देखा। चिश्ती की मूर्तें थीं, मगर ताज्जब है इनकी खूबसूरत आंखें 80% के हिसाब से ऐनक पोश थीं। इसी शहर की तलीमी हालत आमतौर पर नहायत उम्दा मालूम होती है। हमारे होटल का हजाम हिंदुस्तान की तारीख के बड़े बड़े वाक्यात जानता था। गुजराती का अखबार हर रोज पढ़ता था और जापान और रूस की लड़ाई से पूरा बाखबर था। नौ रोज जी दादा भाई का नाम बड़ी इज्जत से लेता था। होटल के नीचे मुसलमान दुकानदार हैं, मैंने देखा, हर रोज गुजराती अखबार पढ़ते हैं। इकबाल 3 रोज मुंबई में ठहरने के बाद 7 सितंबर 1905 को 2 बजे दोपहर जहाज पर सवार हुए। लाला धनपत राम वकील और इनके एक दोस्त जो इत्तेफाक से मुंबई में थे, इन्हें रुखसत करने के लिए घाट पर गए। कोई 3 बजे जहाज ने हरकत की और इकबाल अपने दोस्त को सलाम कहते और रुमाल हिलाते हुए समुंदर पर चले गए। यहाँ तक कि मौजें इधर उधर से आ आकर जहाज को चूमने लगी। इकबाल लिखते हैं, फ्रांसीसी कौम का मजाक इस जहाज की उम्दगी और नफासत से जाहिर है।